Medical Wing of Brahma Kumaris presents Empowering Medical Minds.
Om Shanti. सभी मेडिकल स्टूडेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का इस सुंदर शाम के वक्त में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही सुंदर टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, मैजिक ऑफ इनर पावर। जब भी हम शक्ति के बारे में सोचते हैं तो दो शब्द स्मृति में आते हैं, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर, या फिर यू कहें कि आउटर पावर एंड इनर पावर। इस पूरे संसार में बहुत सारे ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, और जो आजकल ही नहीं बल्कि लंबे समय से आयोजित किए जा रहे हैं, जहां पे इस पूरी दुनिया के थिंकर्स, लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स सॉफ्ट पावर पर टारगेट करते हैं। दे एक्सप्लोर द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉफ्ट पावर इन अवर लाइफ। अगर हम देखें, शक्ति को हम तीन लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं, एक तो एट द लेवल ऑफ बॉडी, और एक है एट द लेवल ऑफ ब्रेन, और तीसरा है अपने मन के लेवल पर, यानी कि माइंड के लेवल पर। आउटर पावर को देखा जाए तो आउटर पावर मींस पावर ऑफ दिस फिजिकल फिटनेस, पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ फेम, पावर ऑफ स्टेटस, पावर ऑफ डेजिग्नेशन, पावर ऑफ नॉलेज एंड पावर ऑफ एजुकेशन, ये सभी आउटर पावर की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन इनर पावर क्या है? इनर पावर है पावर ऑफ माइंड एंड पावर ऑफ इंटेलेक्ट, या फिर यू कहें पावर ऑफ इमोशंस। तो आइए चलते हैं, इनर पावर को और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बार हमने अनुभव किया है कि हम बहुत सारा एफर्ट लगाते हैं लेकिन फिर भी आउटकम बहुत कम होता है, और कभी कभी हम थोड़ा एफर्ट लगाते हैं और बहुत सारा आउटकम हो जाता है। ये डिफरेंस क्यों? काफी बार तो हम पूरा अपना पूरा कैपेसिटी डाल देते हैं लेकिन फिर भी जैसा आउटकम हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो पाता। लेकिन कभी कभी कम मेहनत में लेकिन क्वालिटेटिव एफर्ट में हमें एक बहुत अच्छा आउटकम मिलता है। अगर हमारा एफर्ट फोकस्ड है, 100% है, तो हमारा आउटकम बहुत अच्छा हो सकता है, और ये बताता है कि हमारी इनर पावर बहुत एक्टिवेटेड है। एक और सिनेरियो से इस बात को समझते हैं। अगर हम कोई भी पांच लोगों को एक साथ लें, वो पांच व्यक्ति जो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और उनको सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में एक्सपोज करें, तो उनका रिस्पांस कैसा होगा? उन पांचों व्यक्तियों का रिस्पांस डिफरेंट होगा। इसको मेडिकल साइंस के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। हम बहुत सारी रिसर्च करते हैं जिसमें बहुत सारे कंफाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं। अगर हम पांच व्यक्तियों को ले जिनका फिजिकल एज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, वेट भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिनके फिजिकल पैरामीटर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, जिनको कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स भी नहीं है, जिनके ब्रेन फंक्शन टेस्ट यानी कि कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, इनफैक्ट उनका फाइनेंशियल स्टेटस भी ऑलमोस्ट सेम, और अगर उन पांचों व्यक्तियों को जिनका प्रोफेशन भी ऑलमोस्ट सेम है, उनको अगर हम एक सिमिलर स्टिमुलस दें और हम देखें कि उनका सिमिलर स्टिमुलस को हैंडल करने का तरीका कैसा है, सिमिलर स्टिमुलस को मैनेज करने का तरीका कैसा है, उस सिमिलर स्टिमुलस में उनका रिस्पांस कैसा है, तो नो डाउट हमें उन पांचों व्यक्तियों का रिस्पांस बहुत ही डिफरेंट नजर आएगा। हो सकता है उसमें से कोई व्यक्ति तो बहुत अच्छे से उस सिचुएशन को मैनेज कर ले, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति उस सिचुएशन में बहुत डिप्रेस भी फील कर सकते हैं। अब यहां पर जैसे कि हमने समझा था कि हम पावर को तीन लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं, बॉडी, ब्रेन एंड माइंड। ये पांचों व्यक्तियों को अगर बॉडी के लेवल पर देखें तो फिजिकल पावर इनकी ऑलमोस्ट सेम थी, ब्रेन के लेवल पर देखें तो कॉग्निटिव फंक्शन टेस्ट वर ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन रिस्पॉन्स अगर डिफरेंट है तो डिफरेंस किस चीज का हुआ? There's a difference in the inner power. तो किसी भी सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है, उस सिचुएशन को हम कैसे मैनेज करते हैं, उस सिचुएशन में हम कितने अच्छे से सक्सेस प्राप्त करते हैं, उस सिचुएशन में हमारी मन की स्थिति कितनी ऊपर नीचे होती है, ये सब हमारे इनर पावर पर डिपेंड करता है। तो आज के इस सेशन में हम इनर पावर को 3 हेडलाइंस में एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम इनर पावर के बेनिफिट्स को समझेंगे, फिर हम समझेंगे कि इनर पावर आखिर है क्या, इनकी डिटेल्स क्या है, और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, हम कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टेक्निक्स को एक्सप्लोर करेंगे जिससे हम अपनी इनर पावर को एनहांस कर सकते हैं। क्योंकि आज तक आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हमने अपना टाइम और एनर्जी मैक्सिमम अपनी बॉडी की पावर को और अपनी ब्रेन की पावर को एनहांस करने में लगाया है, जिसमें ब्रेन की पावर में हमने बहुत कम फोकस किया है, लेकिन बॉडी की पावर में हमने सबसे ज्यादा फोकस किया है। हमारा सारा टाइम, एनर्जी, क्रिएटिविटी सब कुछ इस फिजिकल बॉडी पे ही डिपेंडेंट है। हमें लगता है कि बॉडी के लेवल पे अगर हम अपनी पावर को देख लें, अगर हम फाइनेंशियल स्टेटस ठीक कर लें, अपना सोशल स्टेटस ठीक कर लें, अपनी नॉलेज और एजुकेशन ठीक कर लें, तो इट मीन्स वी आर पावरफुल। इंडीड वी आर पावरफुल, बट दिस पावर इज नॉट कंप्लीट पावर। कंप्लीट पावर मीन्स पावर एट द लेवल ऑफ बॉडी, एट द लेवल ऑफ ब्रेन एंड एट द लेवल ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो आइए चलते हैं, समझते हैं कि इस इनर पावर के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो हमारे बुद्धि में आता है कि इनर पावर से हम अपने ब्रेन का 100% पोटेंशियल दे सकते हैं, और माइंड का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन पर है। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि हम अपने ब्रेन का सिर्फ 3% ऑफ पार्ट यूज करते हैं, 3% ऑफ कैपेसिटी यूज करते हैं। आप सोचिए, 3% ऑफ ब्रेन पावर एक्सप्रेस करके, एग्जीक्यूट करके हमने इतने सारे मैजिकल चीजों को क्रिएट किया है। ह्यूमन जनरेशन ने इतनी सारी टेक्नोलॉजी बनाई है, ह्यूमन जनरेशन ने इतनी सारी डिस्कवरीज किए हैं, और इसी डिस्कवरी और टेक्नोलॉजी के जरिए आज हम और आप सामने रूबरू हैं। लेकिन एक बार रुककर सोचिए, अगर हमारा ब्रेन पोटेंशियल 3% से बढ़कर हो जाए तो हम क्या नहीं कर सकते। एंड स्पेशली ये आपके जीवन में अभी बहुत बहुत एप्रोप्रिएट है। आप अपने जीवन के जिस फेज में हैं, जो आपकी ये स्टूडेंट लाइफ है, स्पेशली द मेडिकल स्टूडेंट्स, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आप एलोपैथी में हो, चाहे आप नर्सिंग प्रोफेशनल्स में हो, चाहे आप यूनानी मेडिसिन में हो, चाहे आयुर्वेदा और डेंटिस्ट्री, कुड बी एनीथिंग, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। क्योंकि इसी टाइम पर आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं, इसी टाइम पर आप अपने जीवन को कार्व करते हैं। तो इस टाइम पर हमारे ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ाना बहुत बहुत जरूरी है। तो इनर पावर से हम अपने ब्रेन का पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो बेनिफिट है इनर पावर का, वो है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। हमें अपने जीवन में कभी कभी बहुत जरूरी फैसले लेने होते हैं, वो फैसले हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण करते हैं, उन फैसलों से हमारा पूरा भविष्य टिका होता है। लेकिन हमें ये फैसले लेते वक्त बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारा माइंड में कंफ्लिक्ट होता है, और जब हमें एक सही फैसला लेना होता है तब हम बहुत सारे लोगों की एडवाइस लेते हैं। आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर हम किसी चैलेंज से गुजरते हैं और वहां पर हमें एक फैसला लेना है तो हम बहुत सारे लोगों के पास एडवाइस लेने जाएंगे, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी एडवाइस लेने के बाद हम और ही कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारी इनर पावर एक्टिवेटेड है, एनहांस्ड है, तो हम अपने जीवन में सही फैसले अपनी विजडम से ले सकते हैं, क्योंकि इनर पावर हमें एक डिवाइन विजडम देती है, हमारे इंटेलेक्ट को क्लीन करती है। इनर पावर हमें वो काबिलियत देती है कि हम अपने आप को 3 टाइम फ्रेम में देख सकें, प्रेजेंट टाइम फ्रेम, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम फ्रेम। आप सभी अपना प्रेजेंट टाइम फ्रेम तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, एवरी ह्यूमन बींग कैन सी दैट। अपने पास्ट वाले फ्रेम को भी देख सकते हैं, लेकिन भविष्य को देखना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। इनर पावर हमें फ्यूचर विजन को देखने की कैपेसिटी देती है, जिसको हम सिंपल भाषा में कहें कि हमें दूरादेशी बनाती है। हमारे लिए आने वाले 5 सालों में क्या अच्छा है, इनर पावर हमें वो देखने की विजडम देती है, हमारी फ्यूचर ओरिएंटेड विजन को क्रिएट करती है। जैसे आप में से कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स अगर एलोपैथी में हो या आयुर्वेदी में हो, आप MBBS करने के बाद या BAMS करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सी स्पेशलिटी में करना है, कौन सा मेरे लिए अच्छा है, अक्सर ये डिस्कशन हमेशा मन में भी चलता है और शब्दों में भी चलता है। तो सही फैसला लेना, मेरे लिए क्या अच्छा है, ये इनर पावर हमें विजडम देती है। सो इट मेक्स अवर इंटेलेक्ट क्लीन एंड क्लियर। और एक बहुत अच्छा बेनिफिट इनर पावर का है, सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है, इनर पावर हमारी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिएटिविटी का हेल्थ केयर प्रोफेशन से क्या कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि क्रिएटिविटी इज पार्ट ऑफ पीपल हु आर इन द स्ट्रीम ऑफ आर्ट। हम जब मेडिकल प्रोफेशन में आते हैं तो हमें बहुत सारी रिसर्च करनी होती है। आप हमेशा देख रहे हैं कितनी नई बीमारियां आ रही हैं, कितनी नई बीमारियों के पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स तो हमें पता है, लेकिन उन पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रेन भी दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। एंड स्पेशली द प्रेजेंट टाइम यू कैन थिंक ऑफ, तो जितनी नई बीमारियां आएंगी उनका इलाज भी तो हमें ही खोजना होगा। सो वी हैव टू डू रिसर्च, वी हैव टू डू न्यू डिस्कवरीज इन द मेडिसिन, एंड फॉर दैट वी नीड क्रिएटिविटी। So inner power helps me making my creative vision. जब हमारे inner power activated होती है तो हमारे अंदर एक बहुत specific trait हमारे behavior में आता है जिसको कहते हैं ever ready. Ever ready means कि कभी कभी हमें बहुत छोटे time frame में एक target को पूरा करना होता है, and specially अगर कोई emergency में trauma center में posted हो। जब आप trauma center में posted होती हैं, आपको एक साथ बहुत सारे पेशेंट्स को हैंडल करना पड़ता है। हमें अपने पूरे बॉडी के 5 senses को, ब्रेन की पावर को, माइंड की पावर को अपनी 100% कैपेसिटी में यूज करना पड़ता है। तो जब मेरी इनर पावर एक्टिवेटेड होती है, मैं बहुत छोटे समय में अपने बहुत सारे टारगेट्स को पूरा कर लेती हूँ। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ इनर पावर इज हीलिंग, हीलिंग कैपेसिटी, और वो भी आज के चैलेंजिंग टाइम्स में बहुत बहुत एप्रोप्रिएट है। नॉर्मली लोग समझते हैं कि अगर हमें इन्फेक्शन से छुटकारा पाना है, अगर हमें किसी इन्फेक्शन पर जीत पानी है, तो उसके लिए फिजिकल इम्यूनिटी चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में इम्यूनिटी जितनी ज्यादा होगी उतना हमारे अंदर बीमारियों से लड़ने की ताकत ज्यादा होगी। लेकिन फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ हमारे अंदर इमोशनल इम्यूनिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि हमें फिजिकल लेवल पे हर्ट तो होता ही है इन्फेक्शन के द्वारा, जिसमें फिजिकल इम्यूनिटी हमें हेल्प करती है। लेकिन बहुत बार जब अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस आती हैं, जब अनफेवरेबल चीजों के सामने हमें फेस करना होता है, उस टाइम पर हम इमोशनली भी बहुत हर्ट होते हैं, तो हमें इमोशनल इम्यूनिटी की भी बहुत बहुत जरूरत है। और उसके आगे है हमारी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी। सो इनर पावर हमें हीलिंग कैपेसिटी देती है, हमारी फिजिकल इम्यूनिटी को बढ़ाती है, इमोशनल इम्यूनिटी को बढ़ाती है और स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाती है। आई थिंक इतने सारे बेनिफिट सुनकर आपके मन में तो बहुत सारी क्यूरियोसिटी जग गई होगी कि आखिर ये इनर पावर है क्या। आपने एक बहुत अच्छी बुक पढ़ी होगी बाय द ऑथर अनीता मुरजानी, एंड द नेम ऑफ द बुक इज डाइंग टू बी मी। उन्होंने उसमें ये बताया कि शी डेवलप्ड हॉजकिंस लिम्फोमा, और जो कि पूरे बॉडी में हर जगह मेटास्टेटाइज कर चुका था, बॉडी के एक एक ऑर्गन में फैल चुका था, और वहां के डॉक्टर्स ने उन्हें बोला शी हार्डली हैव फ्यू आवर्स लेफ्ट। परंतु कुछ ऐसा हुआ कि वो वापस आ गई। वापस आने का मतलब कि वो एक हेल्दी फेज में आ गई जहां पर हर बॉडी वॉज फ्री फ्रॉम द हॉजकिंस लिम्फोमा, फ्री फ्रॉम द कैंसर। अब इस फैक्ट को लॉजिकली एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना भी मुश्किल है, लेकिन है तो ये फैक्ट ही, क्योंकि ये उनकी ट्रूथ स्टोरी है। अब ऐसा कैसे होता है, यहां पर इनर पावर का सिग्निफिकेंस हमें पता चलता है, बिकॉज इनर पावर इज मैजिकल, इट कैन इंक्रीज माई हीलिंग कैपेसिटी टू अनलिमिटेड लेवल। इनर पावर हमें एक बहुत अच्छी विजडम देती है, और ये बहुत प्रैक्टिकल विजडम है। कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, लेकिन उस काम को करते वक्त आपने टारगेट भी कर दिया कि इस डेट तक, इस घंटे तक मैं इस कार्य को संपन्न करना चाहता हूं, परंतु उसके बीच में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ गई और एक तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी सामने आ गए हैं। इनर पावर मुझे ये विजडम देगी कि उसमें कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं रूल ऑफ ट्रायज। एंड स्पेशली हेल्थ केयर प्रोफेशन में हम इस रूल को बहुत अप्लाई करते हैं, स्पेशली इन द इमरजेंसी रूम। इनर पावर मुझे हेल्प करेगी कि कौन सी चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरी टॉप प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, और जो मेरी टॉप प्रायोरिटी पर है उसको पूरा करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मैं अपना पूरा टाइम और एनर्जी दे पाऊंगी। इनर पावर मुझे कंट्रोलिंग पावर भी देगी उन डिस्ट्रैक्शंस को पोस्टपोन करने के लिए। आप इमेजिन कीजिए, आपका कल एग्जाम है और एग्जाम से पहले एक बहुत अच्छा क्रिकेट मैच है। आई थिंक बहुत ही नॉर्मल सिनेरियो आप एक्सपीरियंस कर चुके हैं। और अगर आप एक डाई हार्ड क्रिकेट फैन है तो उस दिन आप क्या करते हैं, उस दिन आप अपने मन को कहते हैं कि आई हैव टू पोस्टपोन सीइंग दिस क्रिकेट मैच फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। आपने पोस्टपोन क्यों किया? क्योंकि आपकी टॉप प्रायोरिटी कुछ और है, वो एग्जाम है। अब ये तो एक प्रेशर वाली सिचुएशन थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर वाली सिचुएशन नहीं होती, कभी कभी हमारा एग्जाम नहीं होता, लेकिन ऐसी कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो मेरी लाइफ में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है। प्रेशर नहीं है, लेकिन मुझे अवेयरनेस है कि ये मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। इनर पावर मुझे ये विजडम देगी कि मैं अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी को अचीव करूं, उस टारगेट को अचीव करूं, लेकिन साथ साथ आसपास जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे अपने आप को बचाऊं। एंड इसका बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका जो मुझे मिलता है टू पोस्टपोन द अनवांटेड। मैं टोटल तरीके से उनको इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों के लिए उसको पोस्टपोन करती हूँ। आगे चलके इस मैकेनिज्म को हम और गहराई से एक्सप्लोर करेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लास्ट बेनिफिट ऑफ इनर पावर इज टू हैंडल द कंफ्लिक्ट। कंफ्लिक्ट तो हमारे जीवन में आए दिन हमें अनुभव होते हैं, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे कहो, चाहे फिर पर्सनल लेवल पे कहो, चाहे फिर सोशल लेवल पे या फिर फैमिली में, हमेशा कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट तो होता ही है। अगर किसी इंसान के साथ कंफ्लिक्ट ना भी हो, कभी कभी हमारा खुद से ही कंफ्लिक्ट होता है। हमारे जो फिक्स्ड आइडियाज हैं, हमारे जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनके साथ ही हमारा खुद का खुद से कंफ्लिक्ट होता है। इनर पावर मुझे बहुत अच्छी विजडम देती है कि मैं कैसे अपने कंफ्लिक्ट को रिजोल्व कर सकती हूँ, क्योंकि कंफ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए मुझे बहुत सारी पावर्स को एक साथ यूज करना होता है। कभी कभी मुझे सामना करने की शक्ति को यूज करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी मुझे सहन शक्ति को यूज करना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी मुझे समाने की शक्ति को यूज करना पड़ेगा। सो इमेजिन आई एम यूजिंग ऑल द 3 ऑपोजिट पावर्स एट द सेम टाइम। आई एम एब्जॉर्बिंग, आई एम टॉलरेटिंग, बट आई एम फेसिंग एज वेल। सो दीज आर द ब्यूटिफुल बेनिफिट्स एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इनर पावर। तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अब पता लगाते हैं कि ये इनर पावर आखिर है क्या। इनर पावर को हमने समझा था, दैट इज पावर ऑफ द माइंड, पावर ऑफ द इंटेलेक्ट, पावर ऑफ द थॉट, पावर ऑफ द इमोशन। और इसमें सबसे पहले हम पावर ऑफ द माइंड को समझते हैं। फिजिकल बॉडी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता है, ब्रेन के बारे में अच्छे से पता है, ईच एंड एवरी जो ऑर्गन हमारे शरीर में है, यू आर वेल वर्स्ड विद दैट। बट वी आर नॉट वेल वर्स्ड विद अवर ओन माइंड, हाउ दिस माइंड वर्क्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि माइंड के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, क्योंकि अगर हमने माइंड को अच्छे से समझ लिया तो फिर हम इनर पावर को अच्छे से समझ सकते हैं और उसको एनहेंस भी कर सकते हैं। तो माइंड का सबसे इंपॉर्टेंट रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है विचारों का निर्माण करना। हमारे मन में 24/7 हर क्षण मतलब एक सेकंड, और एक सेकंड से भी कम समय में हर सेकंड हर क्षण विचारों का निर्माण होता है। आप इमेजिन कर सकते हैं कितने सारे थॉट्स 24 आवर्स में क्रिएट हो जाते होंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको क्वांटिफाई करने की भी कोशिश की। अगर हम हर सेकंड में भी सोचें कि एक थॉट क्रिएट होती है, तो एक मिनट में करीबन 60 थॉट्स क्रिएट हो जानी चाहिए, बट इससे कहीं ज्यादा क्रिएट होती है। हमारे माइंड में अक्सर एक मिनट में अप्रोक्सीमेटली 100 थॉट्स क्रिएट होती हैं, एंड यू कैन इमेजिन कि पूरे दिन में कितनी थॉट्स क्रिएट हो जाती होंगी। सो द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द माइंड इज टू क्रिएट द थॉट्स। नेक्स्ट लेवल, अब हमारे माइंड में विचारों का निर्माण तो होता ही है, विचार क्रिएट होते हैं, लेकिन किस तरह के विचार क्रिएट होते हैं इसकी भी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए। हमारे माइंड में पॉजिटिव और नेगेटिव थॉट्स का निर्माण होता है, आप सभी को ये मालूम है। ये कोई नई बात तो हम आपको नहीं बता रहे, लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में आके एक और नई बात मुझे पता चली, एंड दैट इज रियली एस्टॉनिशिंग, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट। बिकॉज हमारे माइंड में 6 टाइप ऑफ थॉट्स क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, न्यूट्रल यानी कि नेसेसरी थॉट्स, चौथी कैटेगरी है व्यर्थ विचार यानी कि वेस्ट थॉट्स, पांचवी कैटेगरी है टॉक्सिक थॉट्स, वेरी हाई इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव थॉट्स, और छठी कैटेगरी है एम्पावरिंग और एलिवेटेड थॉट्स। अब आप सभी इन विचारों का एग्जाम्पल तो मन में सोच ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो नॉलेज हम आपको दे रहे हैं कि 6 टाइप्स ऑफ थॉट्स का हमारे मन में निर्माण होता है, इसका सिग्निफिकेंस मेरे जीवन में क्या है, इस अवेयरनेस का मेरे जीवन में क्या फायदा होने वाला है। फायदा ये है कि आज अभी रुक कर मुझे देखना है कि मेरे माइंड में कौन सी थॉट प्रिडोमिनेंट है। आप लीजिए कुछ क्षणों के लिए पॉज और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने बॉडी को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाते हुए अपने माइंड को देखिए। आज सुबह से लेकर और अभी जो शाम का वक्त है, करीबन 5:30 बजे हैं, ऑलमोस्ट ये दिन समाप्ति पर है। मेरा माइंड इन 6 कैटेगरीज में से कौन सी स्पॉट से प्री ऑक्यूपाइड है, उस थॉट को नंबर 1 लिखिए। अब थोड़ा सा और गहराई में जाइए। अब देखिए कि मेरा माइंड इन बची जो 5 कैटेगरीज हैं, इनमें से कौन सी प्री ऑक्यूपाइड है, प्रीडोमिनेंट है, उसको नंबर 2 पर लिखिए। अब थोड़ा सा और रिफ्लेक्शन करते हैं। जो बाकी 4 कैटेगरीज बच गई, उनमें से मेरे माइंड में कौन सी प्रेडोमिनेंट है। अब अपनी आंखें खोलिए और खुली आंखों से उन 3 कैटेगरीज को अपनी आंखों के सामने लाइए, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। आपका मन करे तो आप अपने रिस्पॉन्सेस चैट बॉक्स पर लिख सकते हैं, लेकिन इस रिफ्लेक्शन के बाद मुझे क्या अवेयरनेस हुआ कि मेरे माइंड में ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 थॉट्स प्रिडोमिनेंट है। और अगर आंसर पॉजिटिव थॉट्स है, एम्पावरिंग थॉट्स है और नेसेसरी यानी कि न्यूट्रल थॉट्स है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एग्जाम्पल है वेस्ट थॉट्स यानी कि व्यर्थ विचार, अगर एग्जाम्पल है नेगेटिव थॉट्स या फिर एग्जाम्पल है टॉक्सिक थॉट्स, देन आई नीड टू डू समथिंग विद माई लाइफ टूडे। This is the basic knowledge every human being should have. ये बहुत बड़ी अवेयरनेस है हमारे जीवन में कि हमारा माइंड अक्सर नेगेटिव और वेस्ट थॉट से प्रीऑक्यूपाइड रहता है। टॉक्सिक थॉट्स भले थोड़े समय के लिए आते हों, लेकिन प्रेडोमिनेंट वे में हमारा माइंड वेस्ट में या फिर न्यूट्रल थॉट से ऑक्यूपाइड रहता है। और जब जब हमारे माइंड में वेस्ट थॉट्स आएंगी या टॉक्सिक थॉट्स आएंगे या नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तब तब हमारे मन की शक्ति घटेगी। सो इनर पावर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द माइंड पावर। इनफैक्ट इनर पावर इज माइंड पावर, मतलब कि मन की शक्ति। और मन की शक्ति किस पर डिपेंडेंट करती है? मन की शक्ति डिपेंडेंट करती है मेरे थॉट्स की कैटेगरीज पे। मेरे मन में जिस तरह के विचार क्रिएट होंगे, उतनी ही मेरे मन की शक्ति होगी। अब तो आंसर आपके सामने सिंपल है। अगर हमें अपने मन की शक्ति को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने मन में पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स का निर्माण करना होगा। ये हम कैसे कर सकते हैं, इस टेक्निक को हम आने वाले कुछ क्षणों में और गहराई में समझेंगे। और अब हम चलते हैं अपने दूसरी डेफिनेशन पे, दैट इज पावर ऑफ इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का क्या रोल होता है, जिसको हम कहते हैं बुद्धि की शक्ति, विवेक शक्ति। जब भी हमारे मन में कोई विचार आता है, इंटेलेक्ट उस विचार को एनालाइज करता है, उस विचार को कैटेगराइज भी करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंटेलेक्ट माइंड को एडवाइस करेगा कि इस वक्त ये विचार गलत है और आप इसको चेंज कर दो। आपने हमेशा एक्सपीरियंस किया होगा, आपके मन के अंदर एक ऐसा डायलॉग चलता रहता है। जब भी हम कुछ गलत सोचते हैं, करने से पहले एक छोटा सा रियलाइजेशन होता है कि नहीं, दिस इज नॉट राइट, एंड दैट रियलाइजेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द इंटेलेक्ट। हमेशा ब्रह्म कुमारी में जो हमने ये स्पिरिचुअल नॉलेज ली है, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई गॉट दिस स्पिरिचुअल नॉलेज इन माई स्टूडेंट फेज, एज यू ऑल आर स्टूडेंट्स राइट नाउ। इनफैक्ट आई गॉट इट मच बिफोर दैट। और जब मुझे माइंड और इंटेलेक्ट का कॉम्बिनेशन पता चला, माइंड और इंटेलेक्ट के इस ब्यूटिफुल मैकेनिज्म को मैंने समझा, तो उससे मेरे जीवन में मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मुझे अवेयरनेस आ गई कि मेरे माइंड में कौन सी थॉट्स आते हैं और मुझे अपने इंटेलेक्ट लेवल पे काम करना है। तो अगर हमें पावर ऑफ इंटेलेक्ट बढ़ानी है, पावर ऑफ इंटेलेक्ट बढ़ाने का क्या मतलब है? अगर मेरी इंटेलेक्ट पावर बढ़ी हुई है तो मुझे कैसे पता चलेगा? इट मीन्स कि माइंड को अच्छी एडवाइस मिलेगी और माइंड इंटेलेक्ट की बात को मानेगा। जैसे ही इंटेलेक्ट माइंड को एडवाइस करेगा कि नो, दिस इज अ नेगेटिव थॉट, डोंट डू इट, माइंड विल लिसन टू द इंटेलेक्ट। दैट इज द पावर ऑफ इंटेलेक्ट। और जैसे कि कुछ क्षण पहले हम समझ रहे थे कि जब हम माइंड पावर से हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ती है, फ्यूचर को देखने का विजन बढ़ता है, ये सब कैसे होता है? ये सब हमारे डिवाइन विजडम से होता है, एंड डिवाइन विजडम इज बेस्ड ऑन डिवाइन इंटेलेक्ट। हमारा इंटेलेक्ट जितना क्लीन, जितना क्लियर होगा, उतना ही हम अपने जीवन में सही फैसले ले सकते हैं। सो दिस वॉज अबाउट इनर पावर, दैट इज पावर ऑफ माइंड एंड पावर ऑफ इंटेलेक्ट। इसी के साथ हमने समझा था पावर ऑफ इमोशंस एज वेल। जब भी कोई थॉट आती है, वो थॉट आगे चल के फीलिंग्स बनेगी और आगे चल के इमोशंस बनेंगे। तो जैसी थॉट्स होगी, ऐसे हम इमोशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्योंकि हमने सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट क्या बताया था इनर पावर का, दैट इज कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड इमोशनल इम्यूनिटी। तो जितनी मेरी इनर पावर होगी, जितना मेरा माइंड पावर एनहांस्ड होगा, जितना मेरा इंटेलेक्ट पावरफुल होगा, क्लीन और क्लियर होगा, उतने मेरे अंदर इमोशनल इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। सो नाउ आई हैव अंडरस्टूड दिस ब्यूटिफुल मैकेनिज्म बिटवीन द माइंड एंड द इंटेलेक्ट। ये जो एक सटल रिलेशनशिप है माइंड इंटेलेक्ट, और उसके बाद आती है पर्सनैलिटी, ये है सोल की फैकल्टीज। जैसे कि सब समझते हैं, मैं एक ब्यूटीफुल एनर्जी हूँ जो इस बॉडी में रेसाइड करती हूँ, और मैं एनर्जी यानी कि मैं आत्मा कैसे अपने जीवन को मैनेज करती हूँ, ये वो मैकेनिज्म था जो हमने अभी अभी समझा है। एंड आई मैनेज माई सेल्फ थ्रू थ्री हेडिंग्स, दैट इज माइंड इंटेलेक्ट एंड पर्सनैलिटी। इनर पावर को एनहांस करने के लिए मुझे अपनी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ और जानने की जरूरत है। मुझे पता होना चाहिए कि मेरी ओरिजिनल पर्सनैलिटी कैसी है, बिकॉज वंस आई एम अवेयर ऑफ माई ओरिजिनल पर्सनैलिटी, आई कैन एनहांस माई इनर पावर लाइक एनीथिंग। सो आई एम दिस ब्यूटिफुल एनर्जी एंड आई हैव अ ओरिजिनल पर्सनैलिटी विच इज मेड अप ऑफ 7 इनेट वैल्यूज, एंड दीज 7 इनेट वैल्यूज आर पीस, लव, हैप्पीनेस, प्योरिटी, नॉलेज, ब्लिस एंड पावर। सो अब तक हमारा जो फोकस था कि वी वॉन्ट टू बी पीसफुल, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी, सो हमेशा हम कहते थे वी वॉन्ट इट, बट नाउ आई नो दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ माई ओरिजिनल पर्सनैलिटी। और आने वाले जो मोमेंट सेशन के हैं, उसमें हम प्रैक्टिकल तरीकों से उन टेक्निक्स को समझेंगे जिससे हम अपनी इनर पावर को एनहांस कर सकते हैं। उसमें से कुछ टेक्निक्स तो ऐसी होंगी जो इंस्टेंटली हमें हेल्प करेंगी, कुछ टेक्निक्स ऐसी होंगी जो परमानेंटली मुझे तरीका समझा देंगी कि कैसे मैं अपनी इनर पावर को बढ़ा सकती हूँ। टेक्निक्स को जानने से पहले हम एक बार एक पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मेरी इनर पावर एक्टिवेटेड है कि नहीं, या फिर सिंपल शब्दों में कहे कि मेरे मन की शक्ति कितनी है। आई शुड बी अवेयर ऑफ इट, सो लेट्स फाइंड आउट। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम इसमें कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे एथलीट्स होते हैं या आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, उनकी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं। उनको अगर कहें कि अपने फिजिकल बॉडी को एक पोजीशन में टिकाएं, या फिर बहुत सारे लोग योगा की प्रैक्टिस करते हैं, वो एक आसन में अपने शरीर को टिका सकते हैं, It means they have good power at the level of body, right? बहुत सारे लोगों के एग्जाम्स में बड़े अच्छे मार्क्स आते हैं. They are very very intelligent people. They get gold medals. Means they have power at the level of brain. अब power at the level of mind का कैसे पता चले? अगर मैं अपने मन को किसी एक स्पेसिफिक थॉट में, किसी एक स्पेसिफिक इमोशन में जितने समय तक चाहे टिका सकूं, और अगर मैं लंबे समय तक उसको टिका पा रही हूं, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट तक, आई एम फोकसिंग माई माइंड फॉर वन फुल मिनट ओनली ऑन वन इमोशन, इट मीन्स माई इनर पावर इज एक्टिवेटेड. मेरे मन की शक्ति बहुत ज्यादा है. तो आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगाया हमारे मन की शक्ति कैसी है? कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बहुत अच्छी है, और कुछ को लगा होगा कि नहीं, मुझे उसको बढ़ाना है. तो आइए चलते हैं इन सुंदर टेक्निक्स को समझते हैं कि कैसे हम अपनी इनर पावर को बढ़ा सकते हैं. तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक है, दैट इज टेक्निक नंबर वन इज अवेयरनेस. ए फॉर अवेयरनेस एंड ए फॉर अटेंशन. जितना जितना मैं अपने जीवन में अवेयरनेस लेकर आऊंगी, जितना मेरे अंदर अटेंशन होगा, उतना मैं अपनी इनर पावर को बढ़ा सकती हूँ. अब ये अवेयरनेस आखिर है क्या? मुझे किस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए? मुझे अवेयरनेस होनी चाहिए मेरे जीवन में हर पल क्या चल रहा है. आई एम अवेयर ऑफ इट. मेरे जीवन की हर एक घटना, हर एक इवेंट से मैं अवेयर हूं. ऐसा ना हो कि मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हो और मैं किसी अंधेरे में हूं. दैट इज नॉट अवेयरनेस. अवेयरनेस को हम एक तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं. आप सभी अपने आप को फिर से कंफर्टेबल पोजीशन में बिठाएं और एक बार फिर अपनी आंखें बंद करेंगे और देखेंगे अपने आप को कि मेरा जीवन अभी कैसा चल रहा है. ये प्रश्न सभी अपने आप से पूछेंगे. हाउ My life is going on right now. आखिर मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरे जीवन में जो जो घटनाएं घट रही हैं, क्या मैं उन सभी से संतुष्ट हूं? मेरे जीवन में जो रिलेशनशिप्स हैं, क्या वो सभी सुखद हैं? I should be aware of it. एक एक इवेंट को अपनी आंखों के सामने लेकर जाइए. आज का इवेंट, कल का इवेंट, जो फिजिकल लेवल पे हो रहा है, रिलेशनशिप लेवल पे हो रहा है, उन सभी इवेंट्स के बारे में अवेयर होते जाइए. अब अपनी अवेयरनेस को थोड़ा अंदर लेकर जाएंगे. Now I am aware of my mind. अपने मन की अवेयरनेस पर आ जाइए. देखें अपने आप को कि मेरी स्टेट ऑफ माइंड अभी कैसी है, मेरे इमोशंस अभी कैसे हैं, मेरा खुद पर कितना टेंशन है. और जिस तरह से मैं अपने आप को अभी अटेंटिव वे में देख रही हूं, क्या इसी तरह से मैं पूरे दिन अवेयर रहती हूं? Am I attentive like this? So I am making a promise to myself that I will be aware. I will increase my awareness of my life. तो जिस तरह से आपने अभी ये कुछ मिनट्स के रिफ्लेक्शन में देखा कि आप अपनी अवेयरनेस को थोड़ा सा और ऊपर लेकर गए. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कुछ छोटे बच्चे होते हैं और बच्चे अक्सर खेलते रहते हैं. तो बच्चा जब खेलता है और उसका पेरेंट्स अगर उसे ऑब्जर्व कर रहा है, तो बच्चे को पता होता है कि यस माय फादर और माय मदर इज ऑब्जर्विंग मी. और उस टाइम पर बच्चा कोई गलती नहीं करता. और जैसे ही बच्चा अगर देखेगा कि माँ बाप की नजर थोड़ी सी इधर हुई, उसी वक्त उस बच्चे को जो मन में आता है वो कर लेता है. अब यहां पर पेरेंट्स ने मुख से तो कुछ भी नहीं बोला, पेरेंट्स ने बच्चे को कंट्रोल करने के लिए कोई भी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया. पेरेंट्स वर जस्ट अवेयर. पेरेंट्स बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे. इसको कहते हैं अवेयरनेस. अगर इसी तरह से हम अपने माइंड को ऑब्जर्व करते रहेंगे, अपने मन को सिर्फ देखते रहेंगे, तो हमें अवेयरनेस रहेगी कि हमारे मन में अभी क्या चल रहा है. वो अवेयरनेस ही हमें बहुत सारी गलत थॉट्स से बचा सकती है. वो अवेयरनेस हमें हेल्प कर सकती है हम टॉक्सिक थॉट्स का निर्माण ना करें, हम व्यर्थ विचारों का निर्माण ना करें. ये अवेयरनेस मेरे इंटेलेक्ट को भी और क्लीन बनाएगी, मेरे इंटेलेक्ट में और क्लैरिटी लेकर आएगी. सो द फर्स्ट प्रैक्टिकल टेक्निक इज अवेयरनेस. दूसरा जो प्रैक्टिकल तरीका है इनर पावर को एनहांस करने का, और वो है गोल्स, यानी कि लक्ष्य. ऐसा कहते हैं ना कि लक्ष्य से लक्षण बनते हैं. आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी. ब्रह्म कुमारीज में हम इस कहावत को अक्सर सुनते हैं, लक्ष्य से लक्षण का निर्माण होता है. और ये जब मैं हमेशा सुनती हूँ, इससे मुझे और अवेयरनेस होती है. किस चीज की अवेयरनेस? कि मुझे अपने लक्ष्य को महान बनाना है, और जितना महान मेरा लक्ष्य होगा, ऐसे ही लक्षण मेरी प्रेजेंट लाइफ में आते जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आप में से किसी ने टारगेट रखा है कि मुझे पीजी एंट्रेंस में ये वाली स्पेशलिटी चाहिए, या कोई सर्जिकल फील्ड चाहिए, और एनीथिंग एल्स, तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपको पता चल जाएगा कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए और कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए. तो उस लक्ष्य को देखते देखते अभी के आपके लक्षण बदलते जाएंगे. इनर पावर को एनहांस करने के लिए हमें अपने जीवन में गोल्स रखने चाहिए, हमें अपने जीवन में टारगेट्स रखने चाहिए. और ये टारगेट शॉर्ट टर्म भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी होते हैं. लॉन्ग टर्म टारगेट मीन्स अ टारगेट माई लाइफ 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. और कभी कभी शॉर्ट टारगेट्स रखने चाहिए कि अभी मुझे आज पूरे दिन क्या करना है. दोनों टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अभी मे बी अराउंड टाइम इज 5:45 और 5:40. आज का मेरा टारगेट क्या है सोने से पहले? कल का जो दिन है, टुमारो इज संडे, कल का मेरा टारगेट क्या है? तो इस तरह से डे वाइज हमें टारगेट्स रखने चाहिए. आप प्रैक्टिकल में इसको ऑलरेडी करते हैं, बताइए कैसे करते होंगे? क्योंकि बहुत बार बहुत स्टूडेंट, बहुत हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और मैं भी इस चीज की जरूर प्रैक्टिस करती हूँ, कि हमेशा एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि आज के पूरे दिन का मेरा रूटीन क्या है, मुझे कौन कौन सी चीजों को करना है. और प्रैक्टिकली जब मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ, तो उसमें से मैं रेड कलर से उस चीज को सर्कल कर लेती हूँ जो मेरे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है. सो आई मेक माई टू डू लिस्ट वेरी कलरफुल एंड रियली इट हेल्प्स मी. रेड सर्कल आई विल डू इट विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, जिसको जो मेरी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है, जिसको मुझे बहुत जल्दी पूरा करना है. उसके बाद किसी और कलर से दूसरा, किसी और कलर से फिर तीसरा, या फिर हम उसको नंबर भी डाल सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. लेकिन हमेशा जब आप अपने टारगेट बनाएं, जब आप अपने गोल्स रखें, तो हमेशा बहुत स्पेसिफिक वे में टारगेट बनाने चाहिए. ऐसा अक्सर कहते हैं कि अगर आपका कोई गोल है तो उसको बहुत स्पेसिफिक करना चाहिए, उसमें डेट डालनी चाहिए, उसमें टाइम डालना चाहिए. सपोज बॉडी के लेवल का एक गोल है, तो इस डेट तक मुझे ये वाला गोल अचीव करना है. आपके प्रोफेशनल लेवल पर आपका गोल है, तो दिस डेट दिस टाइम आई हैव टू अचीव दिस गोल. तो हमेशा जो हमारे टारगेट्स हैं, अगर वो और स्पेसिफिक होंगे, एक्यूरेट होंगे, तो हमारी इनर पावर एनहांस हो जाएगी. कैसे एनहांस होगी? हम अपनी सारी शक्तियों को फोकस कर पाएंगे, सारी शक्तियों को एक साथ उस टारगेट को अचीव करने में लगा देंगे. एक और बहुत अच्छा तरीका है इनर पावर को एनहांस करने का, आई थिंक आई रेड दैट वे इन अ बुक, कि हमें अपना जर्नल लिखना चाहिए, या फिर सिंपल वर्ड्स में कहें कि डायरी लिखनी चाहिए. और डायरी लिखने से बहुत फायदा होता है, लेकिन ये कोई ऐसा नॉर्मल तरीका नहीं है डायरी लिखने का, इट इज अ वेरी स्पेसिफिक वे. हमें अपने जर्नल को, अपनी डायरी को बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइड करना चाहिए, एट द स्पिरिचुअल लेवल, एट द फिजिकल लेवल, एट द पर्सनल लेवल, एट द सोशल लेवल एंड एट द फाइनेंशियल लेवल. स्पिरिचुअल लेवल पे मेरे टारगेट्स क्या हैं, वो अपनी डायरी पर लिखें, अपने जर्नल पर लिखें. फिजिकल लेवल में मुझे कौन कौन से गोल अचीव करने हैं, मेरे प्रोफेशन पे मुझे कौन कौन से अचीवमेंट्स लेनी है, इमोशनल लेवल पे मेरे क्या टारगेट्स हैं, तो वो सारे गोल्स अपनी डायरी में अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करके लिखें और उन सब के आगे डेट्स डाल दें कि इस डेट तक मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। और उस डायरी को लिखकर हमें कबर्ड में नहीं रखना, उस डायरी को हमें एवरी वीक रिव्यू करना है, हर वीक उस डायरी को पलटते जाए। मैंने भी अपनी डायरी में बहुत सारे जर्नल्स में अलग अलग कैटेगरीज में लिखे हैं, और पता है कि जब उसको जब हम रिव्यू करते हैं, कभी कभी अगर हम किसी को पुरानी डायरी को रिव्यू करते हैं और जब देखते हैं कि ये टारगेट मैंने लिखे थे और ये अचीव हो गए, तो बहुत खुशी होती है। इट गिव्स अ वेरी वेरी इलेटेड फीलिंग दैट यस आई हैव अचीव दैट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम गोल्स लिखकर भूल जाते हैं, लेकिन दिस इज नॉट अवेयरनेस। अवेयरनेस मीन्स कि आई एम अवेयर कि मेरे क्या टारगेट्स हैं, मैंने कहाँ लिखे हुए हैं, किस कैटेगरी में लिखे हुए हैं। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल वे टू एनहांस माई इनर पावर। और तीसरा जो तरीका है फोकस। जितना मैं फोकस करूंगी उतना मेरी इनर पावर एनहांस होगी। फोकस का क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा गहराई में समझ सकते हैं। एंड स्पेशली मैं फिर से कहूंगी हेल्थ केयर प्रोफेशन में और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। हमारे मन की शक्ति, हमारा इंटेलेक्ट बहुत सारी अलग अलग बातों में डिवाइडेड रहता है, डिसिपेटेड रहता है, या फिर ये समझे कि हमारी शक्तियां बहुत चीजों में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं। थोड़ी सी शक्ति यहाँ लगी हुई है, थोड़ी सी शक्ति इस व्यक्ति के पास, थोड़ी सी हमारा एनर्जी इस चीज में लगा हुआ है, थोड़ा सा हमारा एनर्जी सोशल नेटवर्किंग साइट में है, थोड़ा सा हमारा एनर्जी किसी वेब सीरीज में है। तो इस तरह से हम अपनी एनर्जी को बहुत चीजों में डिवाइड कर देते हैं। अब सोचिए, हूं तो मैं एक ही और मैंने अपनी एनर्जी को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो फिर आउटकम कैसा होगा। शुरू में हमने बात की थी मोर एफर्ट एंड लेस आउटकम। इसलिए हम बहुत बार एक्सपीरियंस करते हैं कि हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन आउटकम नहीं निकलता। वो क्यों नहीं निकलता, क्योंकि आपने एक व्यक्ति के पास अपनी जितनी एनर्जी लगाई हुई है। सपोज आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपकी जितनी एनर्जी है वो सिर्फ 10% ही लगी हुई है। आप अपनी 10% एनर्जी को ही पूरा यूज करेंगे। आपको लगेगा मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगाई, लेकिन वो यूज कितनी हुई, ओनली 10% आउट ऑफ 100%, क्योंकि 90% एनर्जी तो और चीजों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर हमें लगेगा कि इस रिलेशनशिप को संभालने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी पूरा नहीं होता। आप तो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के फेज में मेरा एग्जाम है 3 महीने बाद, आप पूरे फोकस से पढ़ रहे हैं, अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के पढ़ रहे हैं, लेकिन जब मार्क्स देखते हैं तो हमें लगता है मार्क्स नहीं आए। और फिर हम खुद से पूछते हैं, अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की थी लेकिन फिर भी मुझे आउटकम नहीं मिला। लेकिन वो बहुत पढ़ाई, वो बहुत एफर्ट कितना था, इट कुड बी हार्डली 20%, क्योंकि मेरा 20% एनर्जी ही मेरी पढ़ाई में लगा हुआ है, मेरी 80% एनर्जी तो और बहुत चीजों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो फोकस मीन्स मुझे अपनी सारी एनर्जी को, मन की सारी शक्ति को, अपने इंटेलेक्ट को, अपने अटेंशन को सारी चीजों से समेट कर एक चीज में लगाना है, दैट इज फोकस। आपने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट स्कूल में हमेशा किया होगा ना, जब हम बच्चे से करते थे, सूरज की रोशनी आई, एक मैग्नीफाइंग ग्लास रखा और फिर हम देखते थे कि जो पेपर है वो जलता था। द सन्स रेज आर डिसिपेटेड इन दिस होल अर्थ, लेकिन अगर उसको हम फोकस करते हैं तो बहुत छोटे टाइम में हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। सो टू एनहांस माई इनर पावर इन अ ड्रास्टिक वे मीन्स मुझे अपनी शक्तियों को समेट कर एक चीज में लगाना है। ये तो प्रैक्टिकल तरीका है, लेकिन इसको करने का एक और प्रैक्टिकल तरीका है जिसको कहते हैं पावर ऑफ वन। अब हमने टू डू लिस्ट तो बनाई थी, इसमें हमने 10 चीजें रखी कि आज सुबह से लेकर शाम तक मुझे 10 चीजें करनी है, लेकिन जो उसमें नंबर 1 पर है, मैं आज टारगेट करती हूँ कि नंबर 1 को करूंगी। और जब मैं अपने नंबर 1 टारगेट को अचीव करने के प्रोसेस में हूँ, तो उस टाइम पर मुझे नंबर 2 और नंबर 3 टारगेट के बारे में नहीं सोचना। दैट इज द मोर प्रैक्टिकल वे टू डू इट। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे बाकी रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना, और अगर मुझे कोई रिलेशनशिप का कंफ्लिक्ट रिजोल्व करना है तो उस वक्त मुझे पढ़ाई के या बाकी चीजों के बारे में नहीं सोचना। दैट इज पावर ऑफ वन एंड दैट इज बीइंग फोकस्ड। ये तरीका है जिससे हम अपनी एनर्जी को फोकस कर सकते हैं एक जगह पर और एक डिजायर आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। इनर पावर को बढ़ाने का एक और तरीका है जिसको हम कहते हैं न्यूनेस। हमने बेनिफिट में समझा था कि इनर पावर से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, लेकिन क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेगी वो तो बेनिफिट है, लेकिन इनर पावर को बढ़ाने के लिए हमें अपने जीवन में न्यूनेस लानी पड़ेगी। न्यूनेस लाने का मतलब है, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग कहते हैं ना कि विनर्स डू थिंग्स डिफरेंटली, उस बात काम तो वही करते हैं लेकिन उसको बस एक नए तरीके से करते हैं। और बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी कभी हम अपनी लाइफ में बहुत मोनोटोनस हो जाते हैं, और जब हम मोनोटोनस होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी जैसे कि खत्म। हमें अपने वही रूटीन लाइफस्टाइल को नई तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से कोई पैथोलॉजिस्ट होंगे तो शायद और रिलेट कर पाएंगे। मेरा जो जॉब है हॉस्पिटल का, उसमें हमें बहुत सारे पेशेंट्स की स्लाइड्स देखनी होती है, और स्पेशली उसमें कैंसर पेशेंट्स की काफी स्लाइड होती है, और बहुत स्लाइड देखते 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 आंखों में फटीग भी हो जाता है। और जब वही स्लाइड रोज देखें, पेशेंट चाहे अलग है लेकिन डायग्नोसिस तो ऑलमोस्ट वही होते हैं, तो एक मोनोटोनस वे आता है। तो जब भी हम अपना कार्य करते हैं हॉस्पिटल में, उसमें कुछ तो फ्रेश केसेस होते हैं और कुछ उसमें से ओल्ड केसेस होते हैं जिसको हम पेंडिंग केसेस कहते हैं। तो नॉर्मली जब हम अपने रूटीन को स्टार्ट करते हैं, माइक्रोस्कोप पे बैठते हैं स्लाइड्स को देखते वक्त डायग्नोसिस करने के लिए, व्हेन आई स्टार्ट माय डे, तो द रूटीन प्रोटोकॉल से पहले हम फ्रेश केसेस को देखेंगे। फ्रेश केसेस को देख के सबके डायग्नोसिस लिख के सबकी रिपोर्ट रेडी करके फिर हम पेंडिंग केसेस को लेते हैं। तो ऐसा करते करते मोनोटोनस हो जाता है। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इसको नए तरीके से करती हूँ, क्योंकि हमें अपने माइंड को, ब्रेन को स्पेशली ज्यादा लगाना पड़ता है पेंडिंग केसेस में। क्योंकि वो केसेस पेंडिंग क्यों है, क्योंकि उनको हमें थोड़ा सा और गहराई में समझना है। हो सकता है किसी केस के लिए हमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, बिकॉज मेडिकल साइंस इज ऑलवेज अ लर्निंग प्रोसेस। सो देन आई द चेंज आई डिड इज आई स्टार्टेड सीइंग द पेंडिंग केसेस फर्स्ट। तो मैंने पेंडिंग केसेस को पहले देखा, अपना जितना टाइम एनर्जी पढ़ाई मुझे लगाना था उन केसेस को डायग्नोस करने में लगाया, और उसके बाद मैंने फ्रेश केसेस को देखा। तो जब मैंने ऐसा किया आई फेल्ट गुड, मेरी जो मोनोटोनस वाला जो फीलिंग था वो खत्म हो गया। अब देखो काम तो मैंने वही किया लेकिन उसको अलग तरीके से किया। एंड बट दिस व्हेन आई डिड दिस डिफरेंटली इट ब्रॉट न्यूनेस इन माय लाइफ, और फिर क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। क्रिएटिविटी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जहां ज्यादा एनर्जी लगनी चाहिए थी वो काम हमने पहले कर दिया। तो इनर पावर को बढ़ाने के लिए हमें अपने लाइफ में न्यूनेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइव करते हैं अपने घर से ऑफिस में, आप हमेशा एक ही रूट अपनाते हैं, किसी दिन आप डिफरेंट रूट को अपना सकते हैं। हम मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्मा कुमारीज में राजयोगा मेडिटेशन इज द नॉलेज व्हाट वी रिसीव। मेडिटेशन करने का एक तरीका है, एक कमेंट्री है जिसको हम आने वाले कुछ मिनट्स में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। लेकिन मेडिटेशन भी मोनोटोनस ना हो जाए, उसमें भी न्यूनेस लानी पड़ती है। जैसे कि हमने समझा कि मेरे अंदर मैं जो ब्यूटीफुल एनर्जी हूँ उसकी 7 पावर्स हैं। तो कभी कभी हम मेडिटेशन में फोकस करते हैं हैप्पीनेस पे, कभी कभी हम फोकस करते हैं पावर पे, कभी कभी हम फोकस करेंगे पीस पे। तो जब जब मुझे जो पावर चाहिए, जब जब जो मुझे जो वैल्यू अपने जीवन में इनकॉर्पोरेट करना है, मैं उस बेस पे मेडिटेशन करती हूँ। सो दिस इज अ न्यू वे टू डू मेडिटेशन। सो न्यूनेस मुझे अपने अंदर लानी है। हम कभी कभी न्यू हैबिट्स को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जितना हम न्यू हैबिट्स को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे, उतना हम अपनी इनर पावर को एनहांस कर सकते हैं। अगला जो तरीका है इनर पावर को एनहांस करने का, वो है सैक्रिफाइस। अब आप सोच रहे होंगे सैक्रिफाइस तो बहुत ही बड़ा शब्द है। सैक्रिफाइस को सुन के लगता है कि जैसे हमें पता नहीं क्या त्याग करना पड़ेगा, लेकिन आप जब अपनी लाइफ को देखेंगे ना, आप ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप अवेयर ही नहीं है उस सैक्रिफाइस के लिए, बट यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, बिकॉज स्टूडेंट लाइफ में हमें डेफिनेटली बहुत सारे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। लेकिन ये सैक्रिफाइस आप प्रेशर में आके करते हैं, परंतु इनर पावर को एनहांस करने के लिए अगर मुझे कोई सैक्रिफाइस करना है तो मुझे वो प्रेशर में नहीं आके करना, मुझे वो इलेक्टिवली करना है। दिस सैक्रिफाइस शुड बी माय चॉइस, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल, मुझे एक एक्सपीरियंस याद आता है मेरी लाइफ का, जब मैंने MBBS खत्म किया था और MD की प्रिपरेशन हम कर रहे थे, सो आई डिड माई MBBS आउटसाइड दिल्ली और वापस आए तो नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है एम्स के पास, वहां पर एक ग्रुप था, यूज टू गो देयर एंड स्टडी। तो उस लाइब्रेरी में सीट बहुत कम थी और डॉक्टर्स बहुत ज्यादा थे पढ़ने के लिए, तो फिर क्या होता था, उन सीटों के लिए लाइन लगती थी। एंड कैन यू इमेजिन, मॉर्निंग 5 o'clock बहुत सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो जाते थे लाइब्रेरी के बाहर रोड पर बैग की लाइन लगाने के लिए। कितना अजीब लग रहा है ना सुन के। अब इसमें सैक्रिफाइस क्या है? इसमें सैक्रिफाइस ये है कि कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स को, कुछ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को आदत होती है रात में पढ़ने की, और शायद मेरी भी कुछ ऐसी ही आदत थी, लेकिन इट्स ओके, दोनों आदतें इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में पढ़ना भी अच्छा होता है, लेकिन मुझे वो शिफ्ट बहुत क्विक करना पड़ा। मुझे मॉर्निंग में 5 o'clock आई हैड टू बी देयर टू गेट अ सीट इन द एनिमल, एंड नॉट ओनली मी, बहुत सारे डॉक्टर्स आते थे। सो कोई थर्ड पर्सन देखेगा तो वो सैक्रिफाइस लगेगा, लेकिन वो सैक्रिफाइस उस वक्त हमें फील नहीं हुआ कि वो हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सामने वो टारगेट था। अगर हमें कुछ भी अचीव करना है अपनी लाइफ में तो हमें कुछ चीजों को साइडलाइन करना पड़ता है। वो एक साल जब हम PG एंट्रेंस के लिए पढ़ते थे, हमारी लाइफ में, मेरी लाइफ में और बहुत लोगों की लाइफ में सिर्फ एक ही टारगेट था, दैट वी हैव टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। लेकिन पर्सनली, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि वो जो फेज होता है वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड फेज होता है, उसमें हमारे डिप्रेस्ड होने के चांसेस भी काफी हाई होते हैं, क्योंकि जो आउटकम है, आउटकम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हमें नहीं पता कि एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। परंतु उस टाइम पे पर्सनली अपनी लाइफ में मैंने सिर्फ दो चीजों को अपने साथ रखा, एक तो पढ़ाई, ऑब्वियसली आई हैड अ गोल दैट आई हैव टू क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम, एंड सेकेंड थिंग इज गॉड्स कंपेनियनशिप। ब्रह्मा कुमारीज में आके हमें दो चीजों का ज्ञान मिलता है जो हर ह्यूमन बींग को होना चाहिए, दैट इज नॉलेज अबाउट द सेल्फ, इट मीन्स आई एम अ ब्यूटिफुल एनर्जी हु मैनेज माई लाइफ थ्रू द समागम ऑफ मन, बुद्धि एंड संस्कार, एंड सेकेंड नॉलेज इज परमात्मा की नॉलेज। तो जब हमें परमात्मा का ज्ञान मिला कि परमात्मा सभी आत्माओं के पिता है, वो भी एक चेतन शक्ति है, वो भी पॉइंट ऑफ लाइट है, तो मैंने परमात्मा को गहराई से समझा, उन्हें एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस करने के बाद एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया और उसमें प्रोडोमिनेंट रिलेशनशिप रखा फ्रेंड का, कंपेनियनशिप का रिलेशनशिप। और वो एक साल जहां पर मैंने सिर्फ गॉड को अपना कंपेनियन रखा और अपनी पढ़ाई की, और फिर मैंने अपने टारगेट को अचीव कर लिया, तो उस टाइम पर मुझे अपनी इनर पावर को सबसे ज्यादा यूज करने की जरूरत थी, एनहेंस करने की जरूरत थी। तो वहां पर मैंने सैक्रिफाइस को भी यूज किया और अपनी बुद्धि को, जो अभी हमने डिस्कस किया था, बाकी सब जगह से हटाकर एक जगह पर लगाना। इनर पावर को बढ़ाने का एक और सुंदर तरीका है टू बी एन ऑब्जर्वर। अवेयरनेस और ऑब्जर्वरशिप करीबन एक साथ चलती है। अगर हम अपनी लाइफ को और अपने मन को सिर्फ ऑब्जर्व ही करेंगे, ऑब्जर्व करना जैसे कि साक्षी होना एक पैसिव फिनोमिनन है, उसमें हम कुछ इंटरवीन नहीं करते, लेकिन साक्षी होते हुए, ऑब्जर्व करते हुए हम अपनी इनर पावर को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है इनर पावर को बढ़ाने का, द नेक्स्ट स्टेप इज प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। जब हमें पता चला था इनर पावर की डिटेल्स में, दैट इज पावर ऑफ माइंड एंड पावर ऑफ इंटेलेक्ट, तो इंटेलेक्ट को क्लीन करने के लिए, इंटेलेक्ट को डिवाइन बनाने के लिए, इंटेलेक्ट को स्वच्छ बनाने के लिए, क्लियर बनाने के लिए मुझे साइलेंस की प्रैक्टिस करनी होगी। बिकॉज जितना मैं साइलेंस की प्रैक्टिस करती जाऊंगी, उतना मेरा इंटेलेक्ट इमर्ज होता जाएगा, उतने मेरे इंटेलेक्ट की पावर बढ़ती जाएगी। इसको प्रैक्टिकल वे में आप कैसे इन्वॉल्व करेंगे? हम अपने जीवन में ये प्लान बना सकते हैं आज से, जैसे ही सुबह सोकर उठे, स्पेशली द प्राइम फर्स्ट 15 मिनट्स एज सून एज वी वेक अप, उस वक्त हम साइलेंस की प्रैक्टिस करें और उस प्रैक्टिस के साथ हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में तो सुना ही है, तो अपने माइंड को पावरफुल बनाना, अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कराना और अपने इंटेलेक्ट को क्लीन करना, इन सब के लिए मुझे साइलेंस की प्रैक्टिस की आवश्यकता है। परंतु इस रूल के साथ टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम सोकर उठते हैं एट दैट टाइम माय सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलरेडी एक्टिव। तो उस टाइम पर अगर मैं अपने मन को बहुत सुंदर विचार दूंगी, बहुत एलिवेटेड थॉट्स का निर्माण करूंगी, तो मैं अपनी इनर पावर को एनहेंस कर सकती हूँ। सो द परमानेंट वे टू एनहेंस माई इनर पावर, मैं रिपीट कर रही हूँ, द परमानेंट वे टू एनहेंस माई इनर पावर इज टू क्रिएट दीज एम्पावरिंग एंड एलिवेटेड थॉट्स। महान विचारों का निर्माण करें जब भी हम सोकर उठते हैं। इनर पावर को एनहेंस करने की इस जर्नी में हमें कभी कभी कुछ चीजों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। हमें अपनी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। हमारे कुछ जो फिक्स्ड बिलीफ सिस्टम है, जिसको कहें कि आउटर लेवल पे जो रस्टिंग हो गई है, उसको हमें निकालना पड़ेगा। जैसे कि बहुत एक डर्टी वेसल होता है, जब हम खाना पकाते हैं और उस पर नीचे जो तेल के साथ चिपक जाता है, उसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उस वेसल को सर्फ के पानी में थोड़ी देर भिगो कर रखते हैं और उसके बाद उसको रब करते हैं। इसी तरह से इनर पावर मीन्स कि मेरा मन और इंटेलेक्ट तो अंदर है ही, लेकिन उसके बाहर बहुत सारी रस्टिंग है। किस चीज की रस्टिंग? बहुत सारी बैड हैबिट्स मैंने एक्वायर कर ली हैं, बहुत सारी बैड क्वालिटीज मैंने एक्वायर की हैं। एंगर, ग्रीड, ईगो, अटैचमेंट, लस्ट, ये सारी बीमारियां मेरे अंदर आ गई हैं जो मैंने एक्वायर की हैं। बहुत सारे मेरे फिक्स्ड नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। तो इस आउटसाइड रस्टिंग या डर्ट को रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जितना मैं इसको रिमूव करती जाऊंगी और साथ साथ प्रैक्टिकली इन चीजों को अपनाती जाऊंगी, तो मैं अपनी इनर पावर को बहुत हाई स्पीड से एनहेंस कर सकती हूँ। हमने डर्टी वेसल को रिमूव करने की बात की थी कि उसमें सर्फ के पानी से रखा था। तो सर्फ का पानी मीन्स कि मुझे अपने आप को किस चीज से एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, मुझे अपने आप को हाई वाइब्रेशन जोन में लेकर जाना होगा। जितना हाई वाइब्रेशन जोन में मैं लेकर जाऊंगी, उतना जो मेरे अंदर डर्ट है ये निकलती जाएगी। एंड सेकेंड थिंग वॉज रबिंग। रबिंग मीन्स प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ चार्जिंग, जिसको हम कहते हैं कि अपनी ही पावर को, अपनी ही वैल्यूज की अवेयरनेस में आना और उसको बढ़ाना, उसको रिसरफेस करना। सो द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट परमानेंट वेज टू एनहेंस द इनर पावर इज, फर्स्ट इज स्वमान। स्वमान मीन्स अपने आप को बहुत हाई सेल्फ एस्टीम वाले थॉट्स देना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ पावरफुल बींग, ये स्वमान है। आई एम अ पीसफुल बींग, दिस इज ऑल्सो स्वमान। आई एम गिविंग हाई सेल्फ रिस्पेक्ट टू माई सेल्फ। आई एम क्रिएटिंग एलिवेटेड थॉट्स अबाउट माई सेल्फ इन द प्रेजेंट टेंस। आई एम अ पावरफुल बींग, आई एम अ पीसफुल बींग। और सेकेंड जो तरीका है अपने आप को हाई वाइब्रेशन जोन में रखना, दैट इज कनेक्टेड विद द सुप्रीम। परमात्मा जो इस संसार का क्रिएटर है, इस संसार को संभालता है, जो हमेशा हाई वाइब्रेशन जोन में रहता है, अगर मैं अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करूंगी, तो फिर जो मेरी आउटर डर्ट है वो बहुत जल्दी निकल जाएगी। लेकिन सिर्फ आउटर डर्ट नहीं निकलेगी, सिर्फ मेरे फिक्स बिलीफ, नेगेटिव जो बिलीफ सिस्टम है, सिर्फ वो ही नहीं निकलेंगे, मेरे मन की शक्ति, मेरी बुद्धि की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ जाती है। तो कैसे हम अपने स्वमान को बढ़ा सकते हैं, कैसे स्वमान की प्रैक्टिस करनी है और कैसे सुप्रीम के साथ कनेक्ट करना है, इस प्रैक्टिस को हम अभी समझते हैं। इस प्रैक्टिस को एक्सपीरियंस करने से पहले एक लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज, हमें अपने मन के अंदर ग्रैटिट्यूड को लाना चाहिए, क्योंकि बीइंग ग्रेटफुल एंड बीइंग कंपैशनेट आर हाई वाइब्रेशन इमोशंस। बहुत सारी, चाहे कितनी भी चीजें हो जाएं, बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएं, कोई आपके लिए गलत भी करे, लेकिन एट द एंड मेरे अंदर तीन इमोशंस हमेशा आने चाहिए, ग्रेटफुलनेस, कंपैशन एंड फॉरगिवनेस। अगर मेरे मन में ग्रेटफुलनेस है सबके प्रति, चाहे वो मेरे माता पिता हो, चाहे ये धरती हो, चाहे मेरे टीचर्स हो, और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट परमात्मा, चाहे ये फिजिकल बॉडी ही हो, आई शुड बी ग्रेटफुल टू एवरीवन, आई शुड बी कंपैशनेट टू एवरीवन, एंड आई शुड फॉरगिव एवरीवन, एंड आई शुड फॉरगिव माइसेल्फ। दीज आर हाई एनर्जी इमोशन। हाई एनर्जी इमोशन से मेरी खुद की एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, और मेरी एनर्जी बढ़ना मतलब माइंड की एनर्जी बढ़ना, इंटेलेक्ट की एनर्जी बढ़ना। तो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस करने से पहले हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने इनर पावर के बारे में क्या जाना। तो इनर पावर मींस पावर ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड इमोशंस, पावर ऑफ द थॉट्स। इनर पावर के बहुत सारे बेनिफिट्स हम सबने जाने। इनर पावर को बढ़ाने की सुंदर टेक्निक्स को हमने पहचाना। हम अपने अंदर अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं, हम अपने लिए फोकस रख सकते हैं, टारगेट्स रख सकते हैं, शॉर्ट टारगेट में अपने जीवन को बांध सकते हैं, अपनी एनर्जी को डिसिपेटेड से फोकस कर सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी जहां बटी हुई है उसको एक जगह ला सकते हैं। हम अपने मन के अंदर ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और फॉरगिवनेस को लाएंगे और लास्ट में हम समान की प्रैक्टिस करेंगे और परमात्मा से कनेक्ट होंगे। तो आइए एक्सपीरियंस करते हैं। अपने शरीर को कंफर्टेबल पोजीशन में बिछाते हुए अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेते रहिए। एक बार फिर इनहेल, होल्ड एंड एक्सहेल। अब अपनी अवेयरनेस अपने शरीर की तरफ लेकर जाइए। ये शरीर जिसके द्वारा मैं इतने सारे कार्य करती हूँ, बहुत सारे लोगों की मदद करती हूँ, ब्रेन का इस्तेमाल करती हूँ अपनी पढ़ाई पर, तो इस शरीर के लिए मेरे मन में बहुत ग्रैटिट्यूड है। और इस ग्रैटिट्यूड का रिस्पॉन्स मैं शरीर का ख्याल रखकर करूंगी। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दिस बॉडी। आई विल टेक केयर ऑफ दिस बॉडी। अब अपने सामने अपने शरीर के माता पिता को सामने लेकर आइए। वो माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरा अब तक इतना ख्याल रखा, मैं उनके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और उस ग्रैटिट्यूड का रिस्पॉन्स मैं उनका ख्याल रख के करूंगी। मैं अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना समय उनको दूंगी, उनके साथ बिताऊंगी। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल फॉर दिस मदर नेचर, जिनके इतने सारे रिसोर्सेज मैं रोज यूज करती हूँ। इस पावन धरती ने मुझे कितना कुछ दिया है। मेरे मन में बहुत डीप ग्रैटिट्यूड है इस मदर नेचर के लिए, इस प्रकृति के लिए। और मेरे दिल में सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड है मेरे पिता, परम पिता परमात्मा के लिए, जो मेरी ही तरह एक ब्यूटीफुल एनर्जी है और मेरे पिता हैं, इस संसार के सभी ह्यूमन बीइंग्स के फादर हैं, सभी आत्माओं के पिता हैं। परमात्मा के लिए मेरे मन में असीम ग्रैटिट्यूड है। उन्होंने जो मुझे दिया है वो कर्ज तो मैं किस तरह चुकाऊं? मैं अपने मन की शक्ति को, अपनी बुद्धि की शक्ति को इतना बढ़ाऊंगी कि परमात्मा को मुझ पर नाज हो, उन्हें फखर हो कि ये मेरा बच्चा है। जैसे परमात्मा सबका कल्याण करते हैं, ऐसे मेरे द्वारा भी सबका कल्याण हो। भगवान ने मुझे इतना सुंदर प्रोफेशन दिया है जिसमें मुझे इतनी दुआएं प्राप्त होती हैं, मेरे व्यवहार से किसी को दुख ना पहुंचे। कोई अगर मेरे पास अपना दुख, अपनी बीमारी लेकर आए तो मैं उनसे बहुत प्यार से बात करूं, अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ाऊं, उन्हें मुझसे बात करके ही बहुत सुकून मिल जाए, मैं अपने प्रोफेशन में बहुत स्किल्ड हूँ, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल लेवल पे भी मुझे अपने स्किल को बढ़ाना है, मुझे अपने जीवन में कंपैशन को लाना है। अपने लिए संकल्प क्रिएट करें, आई एम अ कंपैशनेट सोल। मेरे मन में हर आत्मा के प्रति बहुत बिलोंगिंगनेस है। मैं हर इंसान के, हर व्यक्ति के दुख और दर्द को समझती हूँ और उसको रेसिप्रोकेट करने के लिए मैं उनकी मदद भी करती हूँ। मेरे मन में सबके लिए अनकंडीशनल स्नेह है। हर व्यक्ति, हर आत्मा परमात्मा की संतान है, तो सभी मेरा परिवार है। ये बिलोंगिंगनेस मुझे अपने जीवन में हमेशा रखते हैं। आई एम अ पीसफुल बीइंग। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। शांति की शक्ति मेरे रोम रोम में बसी हुई है। शांति तो मेरे जीवन का आधार है। कोई भी पेशेंट, कोई भी व्यक्ति, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे मित्र हो, चाहे मेरे संबंधी हो, जो भी मुझसे मिले उनको शांति का अनुभव हो। परमात्मा सर्वशक्तिवान है और मैं उनकी संतान हूँ, तो परमात्मा की सर्व शक्तियां मेरी हैं। उनका बच्चा होने के नाते मेरे मन की शक्ति भरपूर है। मैं जो चाहूँ, जैसा विचार चाहूँ क्रिएट कर सकती हूँ। मैं हर आत्मा को माफ कर सकती हूँ, अपने आप को माफ कर सकती हूँ, किसी भी इमोशन में टिक सकती हूँ। मेरी बुद्धि बहुत ही पावन है। इस दिव्य बुद्धि से और इस मन की शक्ति से अब मैं अपने जीवन को सुखदायी बनाऊंगी। ओम शांति।
ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज एवं मेडिकल विंग, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, RERF, आपके लिए लेकर आए हैं राजयोग मेडिटेशन कोर्स। आइए इस अंतर मन की यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। राजयोग मेडिटेशन कोर्स का आगामी सत्र सोमवार से गुरुवार, मंडे से थर्सडे शाम 7 बजे से 8 बजे तक मेडिकल विंग के फेसबुक पेज facebook.com/medicalwinghq/live व मेडिकल विंग के यूट्यूब चैनल youtube.com/bkmedicalwing/live। ध्यान रहे, इसका ऑनलाइन लाइव प्रसारण होगा। व्हाट्सएप 8619937031।
Awakening to a new way of living.